नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार आतंकवाद और अशांति फैलाने वाले माओवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की, कहा दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मुंगेर के जमालपुर रेल वर्कशॉप में आयोजित कार्यक्रम में 350 करोड़ रुपए की विभिन्न कार्य योजना का शुभारंभ किया। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद स्थापन की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी तत्व, उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर विविधतापूर्ण भारत का सबसे विविध क्षेत्र है और ये विविधता देश की ताकत है।
साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है, इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्ट का मतलब है सशक्त बनाना, कार्य करना, मजबूत बनाना और बदलना। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र कहा जाता था। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर पर्यटन से जुड़े सभी क्षेत्रों का संपूर्ण पैकेज है और यहां वैश्विक सम्मेलन, अन्य आयोजन और वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपार संभावनाएं हैं।
ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डायवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है और आज दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और खुफिया एजेंसियों की अचूक सूचना तथा सशस्त्र बलों द्वारा घातक कार्रवाई के कारण ये संभव हुआ है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में महान वीरता और रक्षा की सच्ची शक्ति का प्रदर्शन किया है।
ऑपरेशन सिंदूर अपनी भूमि पर हुए टेरर हमलों के जवाब के इतिहास में सबसे सटीक और सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला ऑपरेशन था और इस सटीक ऑपरेशन का न केवल भारत, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, सेना के संयम की भी प्रशंसा हो रही है कि हमने केवल आतंकी अड्डों और उनके एयरबेस को ही टारगेट किया।
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई को पाकिस्तान पर हमला मानकर पाकिस्तान ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है।
पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के अंदर हो रहा, क्योंकि जब पाकिस्तान के टेरर के अड्डों पर हमला किया, जवाब पाकिस्तान की सेना ने दी। जो उनके आतंकवादी आका मारे गए, उनका जब नमाजे जनाजा जब हो रहा था, पूरी दुनिया ने देखा, पाक सेना के आला अफसर इनके कॉफिन को कंधा भी दे रहे थे। एक प्रकार से अब तक पाकिस्तान जो डिनाई कर रहा था, वो आज दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूर्णतया एक्सपोज हो चुका है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के साथ रेलवे वंदे भारत और नमो भारत जैसी नई ट्रेनों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। मुंगेर में आयोजित एक कार्यक्रम में रेल मंत्री ने 350 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में बिहार के रेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
350 करोड़ रुपए का बजट पूरे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बना। जमालपुर वर्कशॉप का वर्कलोड बढ़ाने के लिए वैगन के निर्माण का, टावर वैगन के निर्माण का, और जो जमालपुर जैक के नाम से जाना जाता है वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के निर्माण के टारगेट्स लगातार बढ़ाए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के लिए जो विजन है और बिहार में रेलवे को कैसे डेवलप करना है वो जानकर हमारा हृदय गदगद हो जाए। आज से 10 साल पहले रेलवे के लिए कितना बजट मिलता था? मात्र 1000 करोड़। आज रेलवे के लिए 10,000 करोड़ का बजट है बिहार के लिए, और काम भी जबरदस्त हो रहा है। 98 स्टेशन का नव निर्माण हो रहा है।
रेल मंत्री ने कहा कि भारत ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की शक्ति देखी है। श्री वैष्णव ने जमालपुर स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इर्मी को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रेल मंत्री ने कहा कि 2026 के शैक्षणिक सत्र से इर्मी संस्थान में छात्रों का दाखिला होगा।
वो पॉलिसी बदलेंगे। आज यहाँ से जाने के बाद में तुरंत मैं गति शक्ति विश्वविद्यालय उनके वाइस चांसलर साहब को बुलाऊंगा, बुला के उनको कहूंगा यहाँ पे जमालपुर आए, विजिट करें, विजिट करके किस तरह से हम बाहर से स्टूडेंट्स को 2026 में, ये 2025 चल रहा है, नए बैच की तैयारी करने में एक साल का समय कम से कम लगता है, तो 2026 में पहला बैच हम कैसे लें उसकी व्यवस्था वो करें। महीने भर के अंदर अंदर वाइस चांसलर आएंगे, आपके यहाँ पर पूरा कंप्लीट इसका प्लान बना के जाए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जमालपुर रेल वर्कशॉप की क्षमता वर्धन के लिए वैगन पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का भी शिलान्यास किया। इस पर लगभग 79 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस सुविधा से के शुरू होने से जमालपुर वर्कशॉप में रख रखाव की क्षमता बढ़कर 800 वैगन हो जाएगी। रेल मंत्री ने जमालपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण और यात्री सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। रेल तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज एक अणे मार्ग पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में भी भाग लेंगे। बैठक में बिहार के चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय शिष्टमंडल ने आज टोक्यो में विभिन्न नेताओं से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया। इस दौरान श्री झा ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही आतंकवादी गतिविधि का पाकिस्तान से कोई न कोई संबंध रहा है।
देखिए, हम लोग बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से आज मिले हैं, जो डाइट यहाँ कहा जाता है पार्लियामेंट को, एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग अस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान एक बाहर जाकर के अदरवाइज जाकर के विक्टिम कार्ड खेलता था, वो एक्सपोज हो रहा है इससे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो पूरा जब सिस्टम ही वहां इस टाइप से सोचता है तो पूरा आर्मी, पूरा सरकार वही प्रमोट, वही फाइनेंस, वही ट्रेन करता है। ये चीज बताना था। कल हम उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले, उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर से मिले, आज सुबह हम लोग जो डिफरेंट कंट्री के एम्बेसडर हैं उनसे मिले, उनके थिंक टैंक से मिले। मुझे लगता है कि बहुत ही सक्सेसफुल और खास करके टेररिज्म को लेकर के जो एक वर्ल्ड में व्यू है।
पिछले दो वर्षों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए लगभग 3,000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन अग्निवीरों में से अधिकतर 20 साल के युवा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा की। सेना ने कहा है कि अग्निवीर सैनिकों ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात वायु रक्षा इकाई में भी धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया। अग्निवीरों ने रडार और आकाश तीर नोट्स को संचालित करने के अलावा युवा अग्निवीरों ने पिकोरा, शिल्का, OSA-AK, स्ट्रेला और तुगुस्का मिसाइलों के साथ साथ मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का भी संचालन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस सटीकता से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उससे सभी देशवासी गौरवान्वित हैं। श्री जायसवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान का समर्थन करने वाली पार्टी को जनता कभी माफ नहीं करेगी।
ये पूरा देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह से आतंकवादी ठिकाने को नेस्तनाबूद किया गया और आतंकियों का जनाजा अर्थी पाकिस्तान में निकाला गया, पूरा देश इस बात को लेकर के खुश है कि ऑपरेशन का मतलब होता है किसी एक मिशन के लिए उस ऑपरेशन को करना। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत है, भारत एक नए भारत के रूप में जो है आज दुनिया के सामने पेश हो रहा है। तो इसलिए जो है आने वाले समय में भारत का इस तरह का जो ऑपरेशन हुआ है पूरा दुनिया याद रखेगा।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद स्थापन की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि अनुकंपा और दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर जल्द की जाएगी।
कि जो भी अनुकंपा आधारित नियुक्तियां हैं या दिव्यांग बच्चे बच्चियों के लिए जो विशेष शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वो हम लोग शीघ्र करेंगे और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे और अगले 1.5 से 2 महीने में जो भी पॉलिसी के तहत जो भी जो पोस्टिंग्स है वो सारी कम्प्लीट हो जाएंगे टीचर्स।
चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, वैशाली, गया और नालंदा समेत आसपास के हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार आतंकवाद और अशांति फैलाने वाले माओवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की, कहा दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मुंगेर के जमालपुर रेल वर्कशॉप में आयोजित कार्यक्रम में 350 करोड़ रुपए की विभिन्न कार्य योजनाओं का शुभारंभ किया। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद स्थापन की प्रक्रिया 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।